एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
एकत्र ज्ञान गोष्ठी में स्वागत है। आज हम 20वीं सदी के एक ऐसे दिमाग की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने फलसफे मतलब दर्शन की दुनिया को हिलाकर रख दिया,
और वो भी एक बार नहीं बल्कि दो बार।
हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं लुडविग विटगेंस्टाइन की।
सही, एक ऐसा नाम जो मॉडर्न फिलॉसफी में एक पहेली जैसा है। ऑस्ट्रिया के एक बहुत ही अमीर परिवार में जन्मे थे, पर बाद में ब्रिटिश नागरिक बन गए।
और उनका काम भी कुछ ऐसा ही है ना, जैसे यूरोप की सोच और अमेरिका ब्रिटेन की एनालिटिकल फिलॉसफी के बीच का पुल।
हाँ बिल्कुल, उनको अक्सर इसी तरह देखा जाता है। यकीनन 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली और हाँ थोड़े रहस्यमयी विचारकों में से एक उन्हें माना जाता है।
तो आज कोशिश यही रहेगी कि विटगेंस्टाइन के जीवन को समझें, उनके जो क्रांतिकारी कभी कभी चौंकाने वाले विचार थे उनको देखें,
और उनकी जो छाप आज तक बनी हुई है उस पर भी बात करें।
हाँ, खासतौर पर ये जो भाषा हमारी सोच और असलियत का रिश्ता है, इस पर उनका काम तो गजब का है।
और ये देखना भी बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक ही विचारक अपने ही पहले के विचारों को पूरी तरह से पलट देता है।
सही कहा। अच्छा, तो ये समझने के लिए शायद हमें उस दौर में जाना होगा जिसमें वो जी रहे थे।
हाँ बिल्कुल, वो समय काफी उथल पुथल वाला था। सोचिए, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य खत्म हो रहा था, दो दो विश्व युद्ध हुए, दुनिया ने बड़ी तबाही देखी,
और विचारों की दुनिया में भी हलचल थी, लॉजिकल पॉजिटिविज्म वगैरह।
हाँ, तार्किक प्रत्याशवाद का काफी जोर था, बहुत तेजी से बदलाव आ रहे थे हर तरफ।
सिर्फ राजनीति में ही नहीं, मतलब बौद्धिक माहौल भी गर्म था।
बिल्कुल, गणित, फिजिक्स, लॉजिक, इन सब में नई नई खोजें हो रही थीं। और वियना, जहाँ वो पले बड़े,
वो तो कला और संस्कृति का गढ़ था उस समय।
हाँ, कहते हैं गुस्ताफ क्लिम्ट जैसे मशहूर पेंटर और योहानिस ब्राम्स जैसे संगीतकार तो उनके घर आते जाते थे।
वाह, तो इस माहौल का असर तो पड़ा ही होगा उनकी सोच पर।
यकीनन पड़ा होगा। फिर कैम्ब्रिज में उनकी मुलाकात हुई बर्टन रसल और जी.ई. मूर जैसे बड़े दार्शनिकों से।
हाँ, ये तो बड़े नाम हैं।
और गॉटलोब फ्रेगे, जिन्हें मॉडर्न लॉजिक का पितामह कहते हैं, उनका भी गहरा असर था।
और वियना सर्कल वालों से भी उनका कुछ लेना देना था।
हाँ, उनसे बात तो होती थी, लेकिन वो उनके विचारों के, खासकर लॉजिकल पॉजिटिविज्म के, बड़े आलोचक थे।
अच्छा,
और एक और बात, लियो टॉल्स्टॉय की जो नैतिक सोच थी उसका भी उन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा।
तो ये सब बाहरी दुनिया की उथल पुथल, अंदरूनी बौद्धिक बहसें, ये सब उनके फलसफे में कैसे दिखती हैं?
ये उनके काम की जड़ में है, आप कह सकते हैं। खासकर ये सवाल कि भाषा की सीमाएं क्या हैं, दुनिया को हम कितना समझ सकते हैं, इंसान की जो स्थिति है उसकी ट्रेजेडी, ये सब उनके सवालों को और गहरा करते चले गए।
उनका जन्म तो वियना के बहुत अमीर घराने में हुआ था ना?
हाँ, विटगेंस्टाइन परिवार स्टील इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम था। 8 बच्चों में ये सबसे छोटे थे। घर में कला, संगीत, इसका माहौल हमेशा रहता था।
लेकिन पढ़ाई का रास्ता सीधा नहीं था, इंजीनियरिंग की तरफ कैसे गए?
हाँ, पहले बर्लिन और फिर मैनचेस्टर में मैकेनिकल और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की।
अच्छा,
कहते हैं कि प्रोपेलर डिजाइन के पीछे जो गणित था उसमें उनकी दिलचस्पी बढ़ी, और वहीं से वो गणित की बुनियाद मतलब फाउंडेशंस की तरफ खिंच गए,
और फिर रसेल और फ्रेगे के काम तक पहुंचे।
हाँ, लॉजिक और फिलॉसफी की दुनिया में उनका प्रवेश यहीं से हुआ।
और फिर 1911 में वो कैम्ब्रिज गए,
इंजीनियरिंग छोड़ दी। ये तो बड़ा फैसला रहा होगा।
हाँ, और रसेल से मिलना उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ।
रसेल भी उनकी प्रतिभा देखकर दंग थे। लेकिन फिर पहला विश्व युद्ध आ गया। हाँ, और वो ऑस्ट्रिया की तरफ से लड़े एक आम सैनिक की तरह,
और इसी दौरान उन्होंने अपनी पहली किताब लिखी।
कमाल की बात है ना, लड़ाई के मैदान में, खाइयों में, और बाद में इटली के प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में उन्होंने अपनी पहली महान कृति ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस का ड्राफ्ट पूरा किया।
ये तो सच में अविश्वसनीय लगता है, युद्ध के बीच फलसफा। अच्छा, युद्ध के बाद क्या हुआ? सुलह कुछ बहुत नाटकीय हुआ।
हाँ, उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने फलसफे की जो सारी बुनियादी समस्याएं हैं उन्हें हल कर दिया है।
सच में?
हाँ, और इसी यकीन के साथ उन्होंने अपनी जो खानदानी बेशुमार दौलत थी
वो सब,
हाँ सब, अपने भाई बहनों को दे दी। वो मानते थे कि पैसा दार्शनिक सोच के लिए ठीक नहीं है, एक तरह का जहर है।
अरे बाप रे!
फिर क्या किया?
फिर वो ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव में स्कूल टीचर बन गए।
स्कूल टीचर?
हाँ, और यहाँ तक कि अपनी बहन के लिए घर भी डिजाइन किया, एक आर्किटेक्ट की तरह। ये दौर उनकी गहरी आध्यात्मिक खोज का भी था। तो यहीं से वो बात आती है ना उनके काम के दो अलग दौर की, शुरुआती विटगेंस्टाइन और बाद का विटगेंस्टाइन।
पहला दौर ट्रैक्टेटस वाला है, फिर करीब 10 साल का एक ब्रेक सा रहा फलसफे से, और 1929 में वो वापस कैम्ब्रिज लौटे।
अच्छा।
और ये उनके बाद के विटकिंस्टाइन वाले दौर की शुरुआत थी। इस दौर में उन्होंने अपने ही ट्रैक्टेटस के कई मुख्य विचारों को चुनौती दी, बल्कि खारिज ही कर दिया।
और ये नए विचार उनकी दूसरी किताब में आए जो बाद में छपी।
हाँ, फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस, ये उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई।
वो कैम्ब्रिज में प्रोफेसर भी बने, लेकिन सुना है उनका पढ़ाने का तरीका बड़ा अजीब था।
हाँ, 1939 में प्रोफेसर बने थे, पर उनके लेक्चर वैसे नहीं होते थे जैसे आमतौर पर होते।
मतलब?
वो अक्सर क्लास में टहलते रहते थे, जोर जोर से सोचते थे, अपने विचारों को टटोलते थे, मानो स्टूडेंट्स उनकी थिंकिंग प्रोसेस का हिस्सा हों।
दिलचस्प।
फिर 1947 में उन्होंने प्रोफेसरशिप छोड़ दी ताकि पूरा ध्यान लिखने पर लगा सकें।
उनके जीवन में कुछ जगहें खास रहीं, वियना तो था ही, फिर कैम्ब्रिज, नॉर्वे में एक बिल्कुल अकेली सी कुटिया, और आयरलैंड का देहात भी।
हाँ, हर जगह उनके जीवन और उनकी सोच का एक अलग रंग दिखाती है। वियना उनका सांस्कृतिक घर, कैम्ब्रिज बौद्धिक युद्ध क्षेत्र, नॉर्वे एकांत चिंतन के लिए, और आयरलैंड शायद जीवन के अंतिम पड़ाव में शांति के लिए।
चलिए अब जरा उनके काम पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसोफिकस, जो 1921 में आई, उनके जीवन काल में छपी अकेली फलसफे की किताब।
हाँ।
इसका जो मुख्य आइडिया था वो पिक्चर थ्योरी।
हाँ।
ये क्या था?
इसका मूल विचार ये था कि भाषा जो है वो दुनिया की एक तार्किक तस्वीर बनाती है। मतलब एक सार्थक वाक्य असल में दुनिया की किसी संभावित स्थिति या तथ्य की पिक्चर होता है।
अच्छा।
जैसे नक्शा किसी इलाके की तस्वीर होता है।
कुछ वैसा ही,
पर लॉजिकल स्तर पर। भाषा का जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है वो असलियत के लॉजिकल स्ट्रक्चर से मेल खाना चाहिए, तभी वो सार्थक होगी।
और इसी से वो मशहूर थोड़ी रहस्यमयी लगने वाली लाइन आती है, जिसके बारे में बोला नहीं जा सकता, उसके बारे में चुप रहना चाहिए।
हाँ, ये ट्रैक्टेटर्स का 7वां और आखिरी प्रस्ताव है।
इसका मतलब क्या था उनके लिए, कि कुछ बातें हैं ही नहीं?
नहीं, ऐसा नहीं, मतलब ये था कि भाषा की एक सीमा है। लॉजिक और विज्ञान की बातें तो भाषा कर सकती है, क्योंकि वो दुनिया के तथ्यों की तस्वीर बना सकती है।
ठीक है।
लेकिन नैतिकता, एस्थेटिक्स, ईश्वर, जीवन का अर्थ, ये दुनिया के तथ्य नहीं है, ये भाषा की पकड़ से बाहर है।
तो इनके बारे में बात करना बेकार है?
बेकार नहीं, बल्कि असंभव है। भाषा के माध्यम से आप इन्हें बता नहीं सकते, इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है या अपने जीने के तरीके से दिखाया जा सकता है। तो जहां भाषा काम नहीं करती वहां चुप रहना ही सही है। ये एक तरह से भाषा की बाउंड्री तय कर रहे थे।
ये तो बहुत ही रेडिकल विचार था।
इसने तो फलसफे के बहुत से पारंपरिक सवालों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। बिल्कुल, लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स पर इसका बहुत असर हुआ।
लेकिन फिर जैसा आपने कहा, वो खुद ही इससे पलट गए फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस में, जो 1953 में आई।
हाँ, ये एक जबरदस्त यू टर्न था। इन्वेस्टिगेशंस में उन्होंने ट्रैक्टेटस की जो एक आदर्श तार्किक भाषा की खोज थी उसे ही छोड़ दिया।
छोड़ दिया? क्यों?
अब वो कहने लगे कि भाषा किसी एक फिक्स्ड लॉजिक पर नहीं चलती, असल में भाषा एक टूल बॉक्स की तरह है।
टूल बॉक्स, औजारों का बक्सा।
हाँ, जिसमें तरह तरह के औजार हैं, मतलब शब्द हैं, और हर औजार का अपना अलग काम है, अपना अलग मतलब है।
तो मतलब ये हुआ कि शब्द का कोई एक तय मतलब नहीं होता, उसका मतलब उसके इस्तेमाल से तय होता है।
सही पकड़े, यहीं पर उनका वो भाषा खेल, लैंग्वेज गेम्स का आइडिया आता है।
भाषा खेल, ये क्या है?
उनका कहना था कि शब्दों का मतलब इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन्हें किस संदर्भ में, किस खेल में इस्तेमाल कर रहे हैं।
जैसे?
कोई उदाहरण, जैसे मान लीजिए शब्द है पानी।
हाँ।
जब मैं कहता हूँ एक ग्लास पानी लाओ, तो ये एक आदेश का खेल है।
ठीक।
जब मैं कहता हूँ देखो बारिश का पानी गिर रहा है।
हाँ।
तो ये जानकारी देने का खेल है।
हाँ।
जब कोई गाता है पानी रे पानी तेरा रंग कैसा।
हाँ।
तो ये कविता का खेल है।
अच्छा। हाँ।
शब्द पानी वही है पर खेल अलग, मतलब अलग।
एग्जैक्टली।
भाषा असल जिंदगी में जी जाती है, इस्तेमाल की जाती है।
हाँ।
वो किसी अमूर्त फिक्स लॉजिक पर नहीं टिकी होती।
और इसी से जुड़ा हुआ वो पारिवारिक समानता, फैमिली रिजेम्बलेंस वाला कॉन्सेप्ट भी है कि चीजों का कोई एक सार, कोई एसेंस नहीं होता।
हाँ, बिल्कुल। जैसे आप खेल शब्द को ही लें।
हाँ।
क्या दुनिया के सारे खेलों में कोई एक चीज कॉमन है?
सोचना पड़ेगा। क्रिकेट है, शतरंज है, ताश है, बच्चे पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, सब खेल हैं।
पर क्या कोई एक गुण है जो सब में हो?
शायद नहीं।
उनमें आपस में समानताएं हैं, ओवरलैपिंग समानताएं।
हाँ।
जैसे एक परिवार के लोगों में होती हैं।
हाँ, किसी की नाक मिलती है, किसी की आंखें, किसी का स्वभाव।
पर कोई एक चीज सब में कॉमन नहीं होती। विटकिंस्टाइन ने कहा कि हमारे ज्यादातर शब्द ऐसे ही काम करते हैं, उनका कोई एक छुपा हुआ सार या एसेंस नहीं होता जिसे ढूंढा जा सके।
तो अगर ऐसा है, कोई आदर्श भाषा नहीं, कोई सार नहीं, तो फिर फलसफे का काम क्या बचा?
देखिए, विटगेंस्टाइन के बाद के विचारों के हिसाब से फलसफे का काम अब सिद्धांत बनाना नहीं रहा।
तो फिर क्या?
वो एक तरह की थेरेपी बन गया, चिकित्सा।
थेरेपी?
हाँ, मतलब दिमागी इलाज।
हाँ, एक तरह से। फलसफे का काम है उन वैचारिक उलझनों को सुलझाना, उन गांठों को खोलना जो भाषा के गलत इस्तेमाल या गलत फहमी से पैदा होती हैं।
अच्छा।
उन्होंने एक मिसाल दी थी, जैसे कोई मक्खी एक खास तरह की बोतल में फंस जाती है और बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाती, जबकि रास्ता खुला होता है। वैसे ही हम भाषा की वजह से फिलोसॉफियाना सवालों में उलझ जाते हैं। फलसफे का काम है मक्खी को बोतल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाना, मतलब स्पष्टता लाना, भ्रम को दूर करना। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है फलसफे को देखने का।
हाँ, ऑन सर्टेनिटी, ये भी उनकी मृत्यु के बाद ही छपी। इसमें वो उन बुनियादी विश्वासों की बात करते हैं जिन पर हमारा सारा ज्ञान, हमारी सारी भाषा टिकी होती है।
जैसे?
जैसे ये कि मेरा एक शरीर है, या ये कि दुनिया लाखों साल से मौजूद है। ये ऐसी बातें हैं जिन पर हम आम तौर पर शक नहीं करते। ये हमारे सोचने और जीने के फ्रेमवर्क का हिस्सा है। विटगेंस्टाइन इन्हें कब्जे कहते हैं, जैसे दरवाजे के कब्जे होते हैं जिन पर दरवाजा घूमता है। इन कब्जों पर शक नहीं किया जाता।
अच्छा, तो कुल मिलाके देखें तो उनके मुख्य योगदान क्या माने जाएंगे? शुरू में पिक्चर थियोरी।
हाँ, और लॉजिकल एटमिज्म।
और बाद में ये भाषा खेल, पारिवारिक समानता, फलसफा एज थेरेपी, और एक वो प्राइवेट लैंग्वेज आर्ग्यूमेंट भी बहुत मशहूर है।
हाँ, प्राइवेट लैंग्वेज आर्ग्यूमेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनका तर्क था कि ऐसी कोई भाषा हो ही नहीं सकती जिसे सिर्फ एक व्यक्ति समझ सके और कोई दूसरा नहीं।
मज के लिए भी जरूरी बात लगती है।
बहुत ज्यादा। इस आर्ग्यूमेंट का मन के दर्शन पर गहरा असर पड़ा है।
और वैसे ओवरऑल उनका असर कितना गहरा रहा फलसफे पर और शायद बाहर भी?
जबरदस्त असर रहा है और आज भी है। एनालिटिकल फिलॉसफी तो पूरी तरह बदल गई उनके काम से। मन का दर्शन, भाषा का दर्शन, गणित का दर्शन, सब पर उनकी छाप है।
और क्या उन्होंने लॉजिक और आम भाषा के बीच की खाई को पाटने में मदद की?
हाँ, ये भी उनका एक बड़ा योगदान है। उनका असर सिर्फ फिलॉसफी तक ही सीमित नहीं रहा। भाषा विज्ञान, लिंग्विस्टिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, लिटरेरी थ्योरी, समाज विज्ञान, इन सब पर भी उनके विचारों का प्रभाव दिखता है।
अगर हम उनकी तुलना दूसरे बड़े दार्शनिकों से करें, जैसे कांट या हेगल, वो बड़े सिस्टम बनाने वाले लोग थे।
हाँ, विटगेंस्टाइन का तरीका बिल्कुल अलग था। वो बड़े बड़े सिस्टम बनाने में विश्वास नहीं रखते थे।
तो फिर
उनका तरीका था सवालों की गहराई में उतरना, अक्सर छोटे छोटे विचारों, सूत्रों, एफरिज्म्स या पैराग्राफ्स में सोचना। वो जवाब देने से ज्यादा सोचने का सही तरीका सिखाने पर जोर देते थे।
और प्लेटो या कांट की तरह कोई अंतिम सत्य बताने की बजाय?
हाँ, बाद के विटगेंस्टाइन के लिए फलसफे का काम तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स के महल खड़े करना नहीं था, बल्कि भाषा की वजह से पैदा हुई उलझनों को सुलझाना था, एक तरह से थेरेपी करना।
तो क्या उनकी विरासत आज भी जिंदा है? उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं?
बहुत ज्यादा। उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे भाषा खेल या जीवन के रूप,
फॉर्म्स ऑफ लाइफ,
जीवन के रूप, हाँ, मतलब जीने के वो साझा तरीके, वो संदर्भ जिनमें भाषा का अर्थ बनता है, ये कॉन्सेप्ट्स आज कल्चरल रिलेटिविज्म यानी सांस्कृतिक सापेक्षवाद की बहसों में, AI की समझ में, चेतना क्या है, इन सब सवालों के लिए बहुत अहम है।
और नियम कैसे काम करते हैं, हमारा निजी अनुभव क्या भाषा से जुड़ा है, भाषा और समाज का रिश्ता, इन पर उनकी बातें।
इन पर दार्शनिक आज भी बहस करते हैं, विचार करते हैं। दुनिया भर के फिलॉसफी कोर्सेज में वो एक जरूरी हिस्सा है।
चलिए उनके कुछ मशहूर कथनों को याद करते हैं। एक तो वो ट्रैक्टेटस वाला बहुत फेमस है, मेरी भाषा की सीमाएं मेरी दुनिया की सीमाएं हैं।
हाँ, ये उनके शुरुआती दौर का नजरिया दिखाता है कि जो हम तार्किक रूप से कह सकते हैं वही हमारी सोची जा सकने वाली दुनिया है। भाषा के परे कुछ भी कहना या सोचना संभव नहीं।
और उसी किताब का अंत, जिसके बारे में हम बोल नहीं सकते उसके बारे में चुप रहना चाहिए।
बिल्कुल, ये भाषा की हदों को पहचानने की बात है, खासकर नैतिकता, सौंदर्य जैसी चीजें जो तथ्यों की तरह बताई नहीं जा सकती, उन्हें जीकर दिखाया जा सकता है।
और फिर बाद के दौर से वो बहुत दिलचस्प कोट, अगर एक शेर बोल सकता तो हम उसे समझ नहीं पाते।
हाँ, ये उनके बाद के विचारों का निचोड़ है। मतलब सिर्फ शब्दों में नहीं होता, मतलब हमारे साझा जीवन के रूप में, हमारे संदर्भों और तौर तरीकों में होता है।
तो शेर का जीवन हमसे इतना अलग है?
हाँ, उसका जीवन का रूप हमसे इतना अलग है कि अगर वो हमारी भाषा के शब्द बोल भी ले तो भी हम उसके अनुभव, उसकी दुनिया को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारे और उसके बीच वो साझा संदर्भ, वो साझा जीवन नहीं है।
कमाल की बात है। और एक और सूत्र जो उनके बाद के दर्शन का शायद केंद्र है, किसी शब्द का अर्थ भाषा में उसका उपयोग है।
हाँ, मीनिंग इज यूज। ये बहुत ही केंद्रीय विचार है इन्वेस्टिगेशंस का। अर्थ कोई रहस्यमय चीज नहीं है जो शब्द के पीछे छुपी हो,
बल्कि
अर्थ इस बात में है कि हम उस शब्द का इस्तेमाल कैसे करते हैं, किस काम में लाते हैं, किस भाषा खेल में उसका क्या रोल है। अर्थ कोई निजी चीज नहीं, वो सार्वजनिक है, सामाजिक है।
जाहिर है, इतने अलग और क्रांतिकारी विचार थे तो इन पर बहसें भी हुई होंगी, आलोचनाएं भी।
हाँ बिल्कुल, और वो बहसें आज तक चल रही हैं। एक बड़ी बहस तो यही है कि क्या उनके शुरुआती और बाद के विचारों में एक मूलभूत टूट थी या वो एक ही प्रोजेक्ट के दो हिस्से थे।
अच्छा, इस पर भी अलग अलग राय है।
हाँ, कुछ लोग मानते हैं कि बाद के विट्गेंस्टाइन ने पहले वाले को पूरी तरह रद्द कर दिया, कुछ और मानते हैं कि उनमें एक निरंतरता है। फिर उनके प्राइवेट लैंग्वेज आर्ग्यूमेंट पर भी बहुत बहस है।
किस तरह की?
कि क्या ये हमें व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म की तरफ ले जाता है, या ये कि हमारे मानसिक अनुभवों के बारे में हम सिर्फ बाहरी व्यवहार से ही जान सकते हैं।
और वो जीवन के रूप वाली बात, क्या उससे ये खतरा नहीं कि हर कल्चर का अपना सच हो जाएगा, कोई ऑब्जेक्टिव सच्चाई बचेगी ही नहीं, रिलेटिविज्म?
हाँ, ये आरोप उन पर अक्सर लगता है। आलोचक कहते हैं कि अगर हर चीज जीवन के रूप पर निर्भर है तो फिर तर्क और सच्चाई का क्या होगा, क्या सब कुछ सापेक्ष हो जाएगा?
उनके समर्थक क्या कहते हैं?
वो कहते हैं कि विट्गेंस्टाइन ये नहीं कह रहे थे कि कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि ये कि हमारी समझ हमेशा किसी न किसी संदर्भ, किसी न किसी जीवन के रूप के अंदर ही काम करती है।
एक और आरोप है शांतवाद का, कि उनका फलसफा सिर्फ भाषा के उलझने सुलझाता है, दुनिया की असल समस्याओं पर चुप रहता है।
हाँ, ये भी एक गंभीर आलोचना है कि क्या ये तरीका हमें अन्याय, असमानता जैसे बड़े सामाजिक राजनीतिक मुद्दों से लड़ने की बजाय सिर्फ दार्शनिक पहेलियों में उलझा देता है। क्या ये एक तरह से स्टेटस को यानी यथास्थिति का बचाव करता है?
ये सोचने वाली बात है, और उनके लिखने की स्टाइल भी तो थोड़ी मुश्किल मानी जाती है, सूत्र की तरह लिखना।
हाँ, वो स्पष्टता की तलाश में थे, लेकिन उनका खुद का लेखन कई बार बहुत घना, सूत्र जैसा और व्याख्या के लिए खुला होता है। उसे समझना भी अपने आप में एक चुनौती हो सकता है।
चलिए, जाते जाते कुछ मजेदार किस्से सुनते हैं उनके बारे में। ये बात सच है कि उन्होंने अपनी सारी खानदानी दौलत छोड़ दी थी?
हाँ बिल्कुल सच है, यूरोप के सबसे अमीर परिवारों में से एक के वारिस थे, पर सब दान कर दिया, बहुत ही सादा जीवन जीते थे।
और वो आर्किटेक्चर वाला किस्सा भी सच है, अपनी बहन के लिए घर डिजाइन किया था।
हाँ, वियना में एक मिनिमलिस्ट मॉडर्निस्ट स्टाइल का घर, और वो उसमें भी परफेक्शनिस्ट थे। कहते हैं एक कमरे की छत उन्हें पसंद नहीं आई तो उसे तुड़वा कर सिर्फ 3 मिलीमीटर ऊंचा करवाया ताकि अनुपात बिल्कुल सही लगे।
गजब। और वो पहले विश्व युद्ध में खाइयों में ट्रैकेटस का ड्राफ्ट अपने बैग में लेके घूमते रहे।
हाँ, और एक बार तो वो एक मठ में माली का काम भी करते थे और गंभीरता से साधु बनने के बारे में सोच रहे थे।
साधु और काल पॉपर के साथ वो पोकर वाली झड़प, क्या वो सच थी?
हाँ, वो किस्सा बहुत मशहूर है। कहते हैं कैम्ब्रिज में एक सेमिनार में उनकी काल पॉपर से बहस हो गई।
किस बात पर?
दार्शनिक समस्याओं की प्रकृति पर। और कहते हैं विट्गेंस्टाइन इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने आग जलाने वाला लोहे का पोकर पॉपर की तरफ लहराया और फिर गुस्से में कमरे से बाहर चले गए।
अरे,
हालांकि इस किस्से की सच्चाई पर थोड़ी बहस है कि ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ था या नहीं, पर ये उनके तीव्र स्वभाव को दिखाता है।
वाकई कमाल का जीवन और कमाल के विचार। तो अंत में विट्गेंस्टाइन से हमें क्या सीख लेके जानी चाहिए? शायद जवाब नहीं, बल्कि सवाल पूछने का एक नया तरीका।
बिल्कुल सही कहा आपने। वो हमें तैयार जवाबों का सेट नहीं देते, बल्कि वो हमें ये सिखाते हैं कि हम भाषा, मतलब और अपनी समझ को लेकर जो चीजें मानकर चलते हैं उन पर सवाल कैसे उठाएं।
उनकी सबसे बड़ी देन शायद यही है कि उन्होंने दिखाया कि फलसफे की कई सदियों पुरानी गुत्थियां असल में भाषा को ठीक से न समझ पाने की वजह से पैदा हुई थीं।
हाँ, और उनका वो थेरेपी वाला नजरिया आज भी बहुत काम का है। यह हमारे अपने विचारों में पड़ी गांठों को खोलने का, उन्हें सुलझाने का एक तरीका सुझाता है।
तो वो हमें याद दिलाते हैं कि साफ सोच अक्सर बड़े बड़े नए सिद्धांत बनाने से नहीं आती,
बल्कि हमारी अपनी भाषा और हमारी अपनी सोच की उलझनों को डीमिस्टिफाई करने से, उन्हें खोलने से आती है। एक तरह से वो हमें अपने ही वैचारिक मकड़जाल से बाहर निकलने के औजार देते हैं।
अंतिम कथन। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।